नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट किताबी कीड़ा और मैं हूं आपका दोस्त संजय गोरा। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और आज का एपिसोड का शुरुआत मैं करना चाहता हूं आपके साथ एक टिप शेयर करके। अगर आपको मेरी तरह ऑडियो बुक सुनने में रुचि है तो आप गूगल प्ले बुक्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ऑडिबल ऐप है या स्टोरी टेल ऐप है, इसी तरह से प्ले स्टोर पर गूगल प्ले बुक ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मैंने अभी दो ऑडियो बुक्स हिंदी की फ्री में सुनी है, मुझे अच्छी लगी, और तीसरी बुक भी मैं सुन रहा हूँ, वो भी फ्री है। तो क्योंकि मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। स्वामी ब्रह्मेशानंद जी की किताबें हैं, ईशा उपनिषद के ऊपर एक है, एक कथा उपनिषद के ऊपर है, वो दोनों मैं सुन चुका हूँ। अभी मैं पतंजलि योग सूत्र के ऊपर किताब उनकी जो है काफ़ी लंबी है, 50-56 घंटे की, वो मैं सुन रहा हूँ और अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको ऑडियो बुक सुनने में रुचि है तो आप वो किताबें सुन सकते हैं, और मैं पहले से ही आपका धन्यवाद स्वीकार कर लेता हूँ। तो आइए पढ़ते हैं आज की कहानियाँ। एक समय नारद जी विष्णु लोक की यात्रा पर जा रहे थे। मार्ग में नारद जी को दो सरोवर मिले जिनका जल अत्यंत स्वच्छ, शीतल और मीठा था, परंतु वे दुखी थे क्योंकि कोई भी उनका जल नहीं पीता था। आगे चलने पर उनको दो विशालकाय आम के वृक्ष मिले जो मधुर फलों से लदे हुए थे, परंतु दोनों वृक्ष भी सरोवर की तरह दुखी थे क्योंकि उनके फल कोई नहीं खाता था। आगे चलने पर उनको दो दुधारू गौएं भी मिली जिनका दूध उनके बछड़े भी नहीं पीते थे, इसीलिए वे भी दुखी थीं। नारद जी ने भगवान विष्णु के पास पहुंचकर मार्ग में मिले सरोवर, आम्र वृक्ष एवं गौओं के दुखी होने का कारण बताने हेतु प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा कि यह सब कर्मों का प्रतिफल है, विधाता मात्र न्याय करते हैं, उन्हें किसी से राग द्वेष नहीं है। दोनों सरोवर पूर्व जन्म में दो सगी बहनें थीं, वे धनाढ्य और दानी भी थीं, परंतु वे दान देने में पक्षपात करती थीं, केवल परिचितों को ही दान देती थीं। इतना ही नहीं, वे हमेशा अपनी प्रशंसा की कामना भी करती थीं। उनके विचारों में अत्यंत संकीर्णता थी। उनका उद्धार तभी होगा जब सरोवरों का पानी नहरों द्वारा सभी के खेतों को मिले और सभी का कल्याण हो। इसी प्रकार दोनों आम्र वृक्ष पूर्व जन्म में प्रकांड विद्वान थे, परंतु स्वार्थी होने के कारण उनकी विद्वता का लाभ अन्य लोगों को नहीं मिलता था। उनका उद्धार तभी होगा जब उनके फलों के बीजों से अनेक उद्यान लगाए जाएं और सभी लोगों को फल खाने को मिले। और दोनों गौओं के विषय में भगवान ने कहा कि ये दोनों गौएं पूर्व जन्म में महिलाएं थीं, वे मात्र अपने पति तथा बेटों का ध्यान रखती थीं, उनमें स्वार्थ एवं कपट की भावना अत्यंत प्रबल थी और स्वभाव भी उनका अत्यंत संकुचित था। उनका उद्धार तभी होगा जब उनका दूध अभावग्रस्त रोगियों, पीड़ितों एवं निर्धन बालकों को मिले। भगवान के समाधान के अनुसार तीनों ने आचरण किया और कुछ समय बाद ही तीनों का दुख दूर हो गया। सो उक्त आख्यान से स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार कर्मफल अवश्य ही मिलता है। कर्मफल मिलने में भले ही विलंब प्रतीत हो, परंतु कर्मफल तो मिलेगा ही। दूसरी कथा महाभारत पर आधारित एक अनुश्रुति है कि राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के युद्ध में मर जाने के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जीवन में मैंने कोई ऐसा भयंकर पाप नहीं किया जिसके फलस्वरूप मेरे 100 पुत्र एक साथ मर गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनके पिछले जन्मों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की। तब राजा को मालूम हुआ कि 50 जन्म पूर्व वे एक बहेलिया थे और उन्होंने वृक्ष पर बैठे हुए पक्षियों को पकड़ने के लिए जलता हुआ जाल फेंका था, जिससे 100 पक्षी जलकर मर गए थे, कुछ अंधे हो गए थे। 50 जन्मों तक संचित पुण्य कर्मों के कारण उन्हें अपने इस पाप कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ा और जब पुण्य कर्मों का प्रभाव क्षीण हो गया तो यह फल भोगना पड़ा। इस कथा का सारांश यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बुरे कर्मों का फल यथासंभव भोगना ही पड़ेगा। राजा धृतराष्ट्र को भी अपने पाप कर्म का दंड दृष्टिहीन होकर अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के रूप में भोगना पड़ा। अतएव यह स्पष्ट है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इस कथा के लेखक श्री रमेश चंद्र जी बादल और तीसरी कथा के लेखक श्री निरंजन दास जी धीर। आइए पढ़ते हैं तीसरी कथा। बात पुरानी है परंतु है सच्ची। पुराने पंजाब के मुजफ्फरगढ़ जिले में जंगल के समीप एक छोटा सा गांव था। वहां रामदास नामक एक दर्जी रहता था। आसपास के जमींदारों के परिवारों के कपड़े सीकर वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रामदास सीधा सच्चा भक्त था। उसका साधन था भगवत नाम कीर्तन और भगवान की लीलाओं का गान। कभी कपड़ा सीने की मशीन की टिक टिक के साथ उसका नामोच्चारण का तार बंद जाता तो कभी हाथ की सिलाई के साथ लीला पदों का गान होता। नाम कीर्तन से उसका हृदय निर्मल हो गया था, अतः उसका श्री भगवान से प्रेम तथा संसार से वैराग्य हो गया। उसका जीवन शांतिमय तथा संतोष परायण था। वह हर समय प्रभु कृपा का अनुभव करने लगा। एक असहिष्णु मुसलमान पड़ोसी को उसका शांति और संतोष से रहना बुरा लगा। वह सोचता था कि यदि इस काफिर की मशीन ना रहे तो यह अपनी आजीविका अर्जन ना कर सकेगा और तब यह और कहीं चला जाएगा। एक दिन उचित अवसर मिलने पर उसने भक्त जी की कपड़ा सीने की मशीन चुरा ली। भक्त जी सोचने लगे कि मेरे प्रभु को मशीन की टिक-टिक अच्छी नहीं लगती होगी, तभी तो उन्होंने उसे उठवा दिया है। वे प्रसन्न चित से हाथ से ही कपड़े सीने लगे। उन्होंने मशीन के चले जाने की सूचना भी पुलिस में नहीं दी। और उधर भगवान की भक्त वसलता जागृत हुई। उनसे भक्त की यह हानि न देखी गई। चोरी के दूसरे ही दिन चोर के दाएं हाथ की हथेली में एक भीषण फोड़ा निकला, जिसमें इतनी पीड़ा थी कि ना दिन को चैन ना रात को नींद आती थी। दूसरे ही दिन उसे सरकारी अस्पताल में जाना पड़ा। डॉक्टर ने नस्तर लगाकर पट्टी बांध दी। औषध प्रयोग से जब फोड़ा कुछ अच्छा होने लगता तब दूसरा फोड़ा निकल आता। डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा था कि सारे प्रयत्न करने पर भी उसका हाथ क्यों नहीं अच्छा होता। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा कि रोगी ने अवश्य ही इस हाथ से कोई घोर पाप किया है। उसने रोगी से स्पष्ट कह दिया कि तुमने इस हाथ से कोई घोर पाप किया है, जिसके कारण मेरी अनुभव सिद्ध औषधियों का प्रयोग करने पर भी लाभ नहीं होता। तुम्हें अपना अपराध प्रभु से क्षमा करवाना होगा। रोगी समझ गया कि रामदास की कपड़ा सीने की मशीन चुराने से ही उसे कष्ट भुगतना पड़ा है। उसने गांव में आकर उचित अवसर पर मशीन भक्त जी के घर पर रख दी और उसके हाथ का फोड़ा भी शीघ्र ही ठीक हो गया। आज के लिए बस इतना ही। आपने पॉडकास्ट सुनने के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में दो बातें। मेरा इंग्लिश पॉडकास्ट लाइफ बुक नाम से सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है और दूसरा मेरी लिखी किताबें अमेज़न, फ्लिपकार्ट और अन्य वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं। तो आप इन दोनों में से अगर कुछ ट्राई करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और अगली मुलाकात तक सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप सुन रहे थे पॉडकास्ट किताबी कीड़ा संजय गोरा।